गीता बहन जी स्नेह ममता की मूर्ति सौम्यता और सरलता के अद्भुत संगम है। मन में प्रत्येक के लिए सद्भावना रखने वाली गीता बहन जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि निर्विघ्न स्थिति सेवा एवं संगठन इस विषय पर हम सबका क्लास कराएंगे। हम जोरदार तालियों से गीता बहन जी का स्वागत करते हैं।
ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलते हुए हम सबको काफी समय हो गया है। कोई एक साल से, दस साल से, बीस साल से, तीस साल से चल रहे हैं। और आप सभी यहां भट्ठी करने आए हैं, जरूर उसमें परिपक्व भी बन गए होंगे। नए नए जब ज्ञान में चलते हैं तो हम कच्चे होते हैं, अवस्था हमारी ऊपर नीचे होती है। जैसे कोई भी चीज नई सीखते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, लेकिन जब सीख लेने की ठान लेते हैं और सीख जाते हैं तो वो चीज इजी हो जाती है और नेचुरल हो जाती है। कोई भी सामान्य बात आप ले लीजिए, साइकिल सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि ये करना ही है और मुझे सीखना ही है, तो हम थोड़े दिनों की मेहनत में ही वो चीज सीख लेते हैं और फिर वो चीज सरल बन जाती है। इस प्रकार हम सभी ने ये लक्ष्य लिया है कि हमें अपना ये अंतिम जन्म और ये अंतिम जीवन बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। हमने जीवन के योग मार्ग को पसंद किया है। संसार का जो भोग मार्ग है, प्रेय मार्ग है, वो हमें नहीं चाहिए, ये हम सब ने निर्णय किया है। और जिन्होंने ठान ली है कि यही उत्तम है, यही सत्य है, यही कल्याणकारी है, आज नहीं कल सारा विश्व इस बात को स्वीकार करेगा ही, जिसको अंदर से ये स्पष्ट है वो दिल से मेहनत करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। और जब हम अपनी लगन, अपनी समझ और अपनी दृढ़ता से पुरुषार्थ करते हैं तो थोड़े ही समय में हमारे अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। पक्का बनने में कोई बरसों नहीं लगते हैं, बरसों उनको लगते हैं जो लक्ष्य से नहीं चलते हैं, जो समझ लेते हैं और लक्ष्य बना लेते हैं वो तो बहुत कम समय में परिपक्व हो जाते हैं, उसे मेहनत भी नहीं लगती। और अब हमारा लक्ष्य केवल इस मार्ग में चलना नहीं, अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना नहीं, लेकिन उससे भी आगे हमारा लक्ष्य है कि जब चलना ही है, बनना ही है, तो मुझे संपूर्ण बन के रहना है, बाप समान बनना है। बाबा तो कहते हैं, लेकिन हमारा अपना ये लक्ष्य बन जाए कि मैं जहां तक पहुंची हूं उतना ही नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल बाबा की आशाओं के अनुरूप बनना है। और अपनी एक ऐसी स्थिति, जीवन का एक ऐसा दिव्य स्वरूप मुझे बनाना है जो हम अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। मैं समझती हूं कि हर ब्राह्मण भाई बहनों के दिल की यही अब एक तमन्ना है कि हम बाप समान बन जाएं और बाबा को प्रत्यक्ष कर लें। और कोई इच्छाएं मैं समझती हूं अब हमें नहीं है, बस हम बाबा जैसे बन जाएं और बाबा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करें। और बाबा ने कहा है कि बाप प्रत्यक्ष तब होगा जब आप अपने में संपन्नता को प्रत्यक्ष करें। तो सिर्फ यथाशक्ति, यथा भावना, यथा निश्चय चलने की बात नहीं है। हमें जो पढ़ाई बाबा करा रहे हैं, जो पालना बाबा हमें दे रहे हैं, वो तो इसी लक्ष्य से दे रहे हैं कि हम बाबा जैसा बने। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि दास दासी बन के तो क्या पढ़ाई की, समर्पित होके क्या किए, उच्च पद नहीं पाया तो क्या फायदा है। तो ये बात अंदर अंदर सभी भाई बहने सोच रहे होंगे, आप भी, कि सचमुच साक्षात भगवान पढ़ाएं और मानव जाति की नंबर वन आत्मा ब्रह्मा बाबा जहां एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिकल में दादियां जैसी फरिश्ते आत्मा हमें पालना दे रही हो, वहां हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो जैसे बाबा ने कहा था कि धुन लग जाए, मुझे बनना ही है बस, कोई कारण की बात नहीं है, कोई परिस्थिति की बात नहीं है, कोई बहाने की बात नहीं है। बाबा कई मुरलियों में हमें कह चुके हैं, कुछ भी हो जाए बनना ही है। इसका अर्थ यही हुआ कि अब हमें संपूर्ण रूप से अपने लक्ष्य में एकाग्र हो जाना चाहिए और बातों को सोचने की हमें आवश्यकता नहीं। अब हमें पूरी शक्ति से उस अटेंशन में रहना चाहिए कि बातें तो यहां आएंगी ही, जब तक हम इंसान हैं बातें आएंगी, फरिश्ते बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, और वो भी सभी तो कोई बात नहीं रही। जब तक हम आपस में पुरुषार्थी की स्थिति में हैं, बातें आएंगी। और ऐसा नहीं है कि यहां हमारी आपस में बातें आती है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बातें ना हो, परिस्थितियां ना हो। चाहे आप अपने पारिवारिक जीवन को ले लीजिए, अपने कार्य क्षेत्र के जीवन को ले लीजिए, समाज की स्थिति को ले लीजिए, संसार का कोई क्षेत्र नहीं है जहां बातें ना हो। और विजयी, सफलता, शक्ति, कमाल, बहादुरी उससे ही कहा जाता है कि जहां बातें हों और फिर भी हम अपना लक्ष्य सिद्ध करते हैं। इसलिए दुनिया में भी लोग अपने आत्मबल से इतने आगे बढ़ते हैं। जिस दुनिया में ज्ञान नहीं है, जिस दुनिया में पवित्रता नहीं है, डिवाइन मैनर्स नहीं है, ऐसे लोगों के बीच भी वे उगते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक प्रकृति में भी शक्ति है। कैसी भी गंदी खाद से ऐसे सत्व खींचते हैं जो खुशबूदार फूल, रसदार फल हमें देते हैं। हम यहां देखते हैं कैसे पत्थर के बीच से भी कहां कहां से वो पेड़ उग करके बाहर आते। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी चट्टान के बीच ये कहां से धरती के पास पहुंचे होंगे और अपना रस खींचते होंगे। प्रकृति में भी वो क्षमता है। और हम योगी आत्माएं हैं, विरल आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान हमारी बुद्धि में है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, पवित्रता की शक्ति हमारे साथ है, डायरेक्ट भगवान से योग है। अगर मुझे बनना है तो कोई बात मुझे रोक नहीं सकती। मैं कई बार ये सोचती हूं और बताती भी हूं कि शुरू में जब सारी दुनिया विरोध कर रही थी, सब हमें ना कर रहे थे, तब भी हम ज्ञान में चले। समाज ना कह रहा था, संबंधी ना कह रहे थे, लोग विरोध करते थे, है ना, फिर भी हमने ज्ञान ऐसा रियलाइज किया कि हम इन सबके विरोध के बावजूद भी चले, ज्ञानी बने, योगी बने। 63 जन्मों की भक्ति, 63 जन्मों के विकारी जीवन को एक धक से हमने छोड़ दिया। 7 दिन के ज्ञान में इतनी शक्ति, 3 दिन की शिविर में इतनी शक्ति, हमने जीवन परिवर्तन कर लिया। अब क्या कारण है जो कोई ना नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं और फिर भी हम फरिश्ते क्यों नहीं बन पा रहे, क्या कारण है? कोई ना तो नहीं कर रहा है ना कि भाई फरिश्ता मत बनिए, कह रहा है कोई आपको, हाँ, रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। क्या कारण है जो हम नहीं बन रहे हैं? जरूर ये हमारा अपना कारण है। क्योंकि अब जो परिवर्तन करना है योगी से फरिश्ता, वो आंतरिक परिवर्तन है, सूक्ष्म परिवर्तन है, जो हमारी अवेयरनेस और हमारी दृढ़ता से ही हो सकता है। ज्ञानी बनने के बाद अगर कोई फैशन करता है, बाहर होटल का खाता है, पिक्चर देखता है, तो ब्राह्मण परिवार उसको टोकेगा, उससे कहेगा, उस सहयोग से भी हम परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन अब जो परिवर्तन करना है वो तो अंदर से करना है, अंदर की सूक्ष्म वृत्तियों का करना है, सूक्ष्म स्मृतियों का करना है, आंतरिक स्थिति का परिवर्तन करना है। और वो परिवर्तन तो मैं स्वयं देखूंगी, स्वदर्शन करूंगी, तभी हो सकता है। इसलिए जो सिंसियर पुरुषार्थी है वो समझ रहे होंगे कि आप अंतर्मुखी बनने की ज्यादा जरूरत है, अपने प्रति फोकस्ड होने की ज्यादा जरूरत है, सेवा के नाम पर। कई बार हम बहिर्मुखी बन जाते हैं, बेशक सेवा नहीं सिखाती है, लेकिन नाम सेवा का होता है, हम अपनी स्थिति बहिर्मुखी बना देते हैं। इसलिए जितना अंतर्मुखी होंगे और जितना हम अपनी नेचुरल तपस्या पर अटेंशन देंगे, हम अपनी स्थिति को बना सकेंगे। हर एक चाहते हैं, क्योंकि संगम युग की अचीवमेंट हमारी अवस्था है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति है, सेवा के द्वारा, धारणा के द्वारा, योग के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, सहयोग के द्वारा, अल्टीमेट हम अपनी एक ऊंची दिव्य स्थिति अवस्था ही तो बनाना चाहते हैं। और वो अवस्था हमारी एक रस निर्विघ्न रहे, उसके लिए हम अपने जीवन में कुछ बातों की धारणा बना ले, कुछ सिद्धांत बना ले, क्योंकि हमारी अपनी अवस्था में डिस्टर्बेंस आता है। सबसे पहला स्वयं के ही पुराने संस्कारों से, पहला विघ्न ये होता है, मोटे मोटे संस्कार हमने बदल दिए हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म पुराने संस्कार जो डीप रूटेड है, उन संस्कारों से हमें फिर विकारी संकल्प आते हैं, या मन सा तूफान आते हैं, या वो अट्रैक्शंस आते हैं। उन पुराने संस्कारों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखने के लिए हमें विशेष दो बातों का अभ्यास करना चाहिए। एक है डिटैच रहना, देहभान से डिटैच और सोल कॉन्शियस रहना, क्योंकि जितना हम देहभान से डिटैच रहेंगे, पुराने संस्कारों को फिर से इमर्ज होने की मार्जिन नहीं मिलेगी। जितना आप देहभान से डिटैच रहेंगे, आप ऑटोमेटिक सब बातों में डिटैच, न्यारे, साक्षी होते जाएंगे। एक घड़ी पुराना संस्कार मनसा संकल्प के रूप में इमर्ज भी होगा, लेकिन आप डिटैच होंगे तो वो आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। वो आपको कर्मेंद्रियों से चलित नहीं कर सकेगा। वो ऐसे ही होगा जैसे बुद्धि के स्क्रीन पर वो बात आई और गई, लेकिन उसके लिए हमें ये हमारी फाउंडेशन की मूल साधना को पक्का करना होगा। क्यों बाबा ने एक मुरली में बार बार मैंपन और मेरेपन को खत्म करने के लिए कहते हैं? क्योंकि ये दोनों चीजें हमें सोल कॉन्शियस नहीं बनने देगी। इसलिए आवश्यक है कि इस पहले पाठ को हम बहुत पक्का कर लें, प्रैक्टिकल में वो सोल कॉन्शियस। और दूसरी बात बाबा ने कहा है कि हमें शक्तिशाली तपस्या करनी हो। बाबा ने कहा है जो कड़े संस्कार है उनको गलाने के लिए योग की शक्तिशाली अग्नि चाहिए, ज्वाला चाहिए। तपस्या की मात्रा को हम बढ़ाएं। ज्ञान का विस्तार हमारे पास है, सेवा का भी नेचर है, सहयोग हमें देना ही देना है क्योंकि हमारा अपना कार्य है, लेकिन साधना को भी हम अंडरलाइन करें तो जितनी योग की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि कोई भी विकारी संस्कार के परिवर्तन के लिए हमें अपने आदि अनादि गुण स्वरूप को बार बार इमर्ज करना होगा। हमें ये पक्का हो जाए कि ओरिजिनली आदि अनादि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो जिस भी विकार के संस्कार को हमें बदलना है, उसके सामने हमें असली गुण स्वरूप को बार बार स्मृति में लाना होगा। तो हम पुराने संस्कारों के हिसाब को चुकाते जाएंगे और आखिर वो ढीले पड़ जाएंगे और वो हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मानसिक युद्ध जो चलते हैं, मनसा जो तूफान आते हैं, जब तक बाबा कहते हैं अंदर गंदगी है, अशुद्धि है, वो मनसा तूफान के रूप में बाहर आती रहती है। इससे हमें पता चलता है कि अभी भी अंदर से प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, और वो करने की मेथड ये ही है जो बाबा ने हमें सिखाई है। और दूसरा, हमारी आंतरिक रूहानी स्थिति में जो विघ्न आते हैं वो अब बाहर से नहीं आते हैं, लेकिन आपस में ही एक दो के चलन या संस्कार स्वभाव को देखने से आते हैं। बाबा ने पिछले सीजन में भी हम सबको कहा था कि स्व परिवर्तन नहीं कर सकने के मुख्य दो कारण हैं, और वो यही है कि हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों को फॉलो करते हैं। जहां मुझे स्वयं को देखना है और बाबा को देखना है, जहां मुझे ये माइंड करना है कि मुझे क्या करना है और बाबा ने क्या कहा है, वहां दूसरे क्या करते हैं और दूसरे क्या कहते हैं उसमें हम चले जाते हैं। आखिर हम सब आपस में नंबरवार पुरुषार्थी हैं, हम एक दो की मत पर कैसे चल सकते हैं? अगर मुझे बाबा कहते हैं वो लक्ष्य पाना है, तो श्रीमत जो कहती है वो ही मुझे करना है। इसलिए स्वयं को देखना है, बाबा को देखना है, अपने इनर वॉइस को फॉलो करना है, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। तो आपस में कितने भी बड़े संगठन में हम रहेंगे और हम नंबरवार पुरुषार्थी होंगे, तो भी किसी की कोई बात हमें माइंड नहीं, वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर। आसपास की बातें मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसका अर्थ तो यही हुआ कि मैं अपने में और बाबा में मग्न नहीं हूं। तब तो मुझे ये आसपास की सारी बातें दिखाई दे रही है। जो स्वयं में अपनी ही लगन में मगन है, जो बाबा की लगन में मगन है, उसे और किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं। और रोज की मुरली, बाबा के महावाक्य इतने स्पष्ट है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम मुरली से ही समझ सकते। और फिर भी बाबा ने, यज्ञ ने अपने तरफ से निमित्त आत्माओं को बिठाया है, उनसे हम राय ले सकते हैं, उनकी राय और बाबा की मुरली से हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो मुंझने की कोई बात ही नहीं है। जो अपनी रोज की दिनचर्या को एक्यूरेट रखते हैं और जो सेवा और पुरुषार्थ में मग्न रहते हैं, उनको आपस में कोई विघ्न नहीं आते। हम फ्री हैं तभी व्यर्थ में जाते हैं, दूसरों को देखते हैं। अपनी दिनचर्या हमारी व्यवस्थित, ऐसा नहीं है हम भी ड्यूटी करते हैं। आप कहेंगे हमें बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस काम होता है, घर के काम होते हैं, समाज के प्रसंग होते हैं। यहाँ बाबा के घर में भी हमें इस प्रकार की सेवा कारोबार है ही। दिनचर्या एक्यूरेट रखने का मैं ये मतलब कर रही हूँ कि मुझे कितना भी सेवा करनी पड़े, लोगों के संपर्क में आना पड़े, लेकिन मेरा जो नित्य का पुरुषार्थ है वो मुझे आगे पीछे कैसे भी करके कर लेना। समझो बाबा कहता है सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय सुबह उन्नति का है, वो समय साइलेंस में रहने का है और खुद के एम्पावरमेंट का वो समय। अब हम यहां देखते हैं कि हमें उसी टाइम के बीच में कई प्रकार के सेवा के कारोबार आते। अपनी ड्यूटी करनी होती है, फोन्स लेने होते हैं, प्रोग्राम सेट करने होते हैं, एकोमोडेशन देना होता है। ऐसे हर डिपार्टमेंट वालों को अपना अपना कारोबार है, लेकिन वो काम करते हुए भी मैं अंदर से अपने मन को उसी प्रोग्राम में रखती हूं कि ये समय मेरा बाबा की याद का समय है। आवश्यक कार्य है मुझे करने हैं, लेकिन वो याद में करने हैं, साइलेंस में करने। तो मेरे हिसाब से दुनियावी कितना भी कारोबार, कितनी भी जिम्मेवारियां हमें स्थिति से नीचे नहीं उतार सकते हैं। लक्ष्य पक्का हो कि ये मेरा नित्य का पुरुषार्थ मुझे कर ही लेना है, इसलिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित। और दिनचर्या में विशेष कौन सी बातें, कितना सरल पुरुषार्थ बाबा ने हमें सिखाया है। हमारे 4 विशेष पुरुषार्थ है रोज, अमृत वेला, मॉर्निंग मुरली क्लास, शाम का योग और रात का स्व चेकिंग और बाबा से चार्ट बताना। बस इतना ही तो पुरुषार्थ है। बाकी कर्म योग में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और बाबा की याद में हम खाते हैं, पीते हैं। इतना भी अगर हम व्यवस्थित करते हैं नेचुरल योगी आप बन सके। कोई बहुत भारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की बात नहीं। इसलिए अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना ताकि मुझे स्वयं से भी विश्वास हो जाए कि मैं कुछ बन के दिखाऊं सकूंगी। ईश्वरीय परिवार को भी निश्चय हो कि ये सचमुच कोई विशेष पुरुषार्थ करने वाली आत्मा। हमारी निमित्त टीचर्स दादियां दीदियों को भी हमारे से निश्चिंती हो जाए कि ये कुछ भी हो डगने वाली आत्मा नहीं, और बाबा की नजर में भी हम विशेष माला के मणके बन जाएं कि ये अपना नंबर लेने वाली आत्माएं। छोटी छोटी बातों में अपनी स्थिति को अपसेट करने वाले ये नहीं है, हमारे में वो आर्ट आ जाए, वो कला आ जाए कि हम अपनी स्थिति को बना के चल सके। इतनी पालना प्यार जो बाबा हमें दे रहा है उसका रिजल्ट यही तो हमें देना है। अभी तक हमारी अवस्था बिगड़ती रहे, मूड बिगड़ते रहे, हमारे पीछे बहनों को ध्यान देना पड़े, हमें बिठा के खास पालना देनी पड़े, क्या अर्थ है? नए 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 हजारों भाई बहने आते हैं, अब उनकी पालना निमित्त बहने करें ना। जो पुराने हैं वो तो अपने से निश्चिंत कर देवे ना। तो अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना अपने हाथ में। पहला पुरुषार्थ तो यही करे कि विघ्न आवे ही नहीं, विघ्न आए ऐसी बातें ऐसी चलन चले ही क्यों, मुसीबत पैदा करें और फिर मिटाने की कोशिश करें। अपना वाणी विचार व्यवहार ही हम ऐसा रखें जो विघ्न पैदा ना हो। अज्ञानियों से, लौकिक से, चाहे अलौकिक से। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे। बजाय कि विघ्न क्रिएट करें और फिर उसको खत्म करने की मेहनत करें, हम चले ही ऐसे न्यारे प्यारे बन के स्वयं में एकाग्र, बाबा में एकाग्र, कि बातें उत्पन्न हो ही नहीं। कल ही बाबा ने कहा था ना कि करें और फिर कहें कि माफ करना। कल की मुरली में था ना शायद, इसका क्या अर्थ है? बाबा ने कहा उसको ज्ञानी आत्मा समझदार थोड़ी कहे। इसलिए आपस में भी हम डिटैच रहे, अलौकिक रहे, एक दो से ज्यादा लौकिक नहीं बन जाए। और हमारा संगठन, क्योंकि हम एक अकेले बाबा के काम को पूरा नहीं कर सकते हैं, हमें संगठन मिलके हम करेंगे तब हम बेहद के बाप का ये बेहद का काम संपन्न कर सके। एक अकेला ही कर सकते थे तो ब्रह्मा ही कर देते थे, इतने ब्राह्मण पैदा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, कार्य इतना विशाल है, सर्व के सहयोग से होता है। इसलिए संगठन तो रहेगा ही, संगठन तो चाहिए ही, लेकिन हमारा संगठन, हम जहां हैं वहां का संगठन, हम लक्ष्य रखें आपस में इतना शांति से प्यार से मिलके चले, आपस में हमारी यूनिटी रहे, तब तो हमें सफलता मिलेगी। सक्सेस के लिए यूनिटी चाहिए, सभी के गुण शक्तियां, सभी का तन मन धन समय एक लक्ष्य और एक दिशा में लगेगा, तब तो सक्सेस मिलेगी। पांच पांच फीट 50 जगह खोदें, इससे थोड़ी पानी निकलेगा। एक ही जगह 200 फीट खोदो तो पानी निकलेगा। मैं इधर करूं, आप उधर करें, ये इधर करें, काम तो होगा, लेकिन जो बाबा चाहते हैं वो रिजल्ट हम नहीं ला सके। और हमारा संगठन में एकता हो, संगठन तो है पर अगर उसमें एकता नहीं है तो वो एक सिर्फ जमघट है, वो संगठन नहीं है। ठीक है, इकट्ठे हुए हैं लेकिन कोई तालमेल नहीं है, कोई एक सुर नहीं है, तो काम क्या बनेगा। इसलिए संगठन में यूनिटी हो, उसके लिए बाबा हमें कहते हैं आपसी रिलेशन में तीन बातें धारण करो। एक तो हमें सबके लिए प्यार रहो, लव, नए हैं पुराने हैं, छोटे हैं बड़े हैं, गरीब हैं शाहूकार हैं, पढ़े हुए हैं अनपढ़ हैं, युवा हैं बूढ़े हैं, मतलब ही नहीं है, सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। वो रूहानी प्यार, जैसे बाबा ने हर आत्मा को प्यार दी, इसलिए हर आत्मा के दिल से मेरा बाबा निकले। बाबा को सब प्यार करते हैं क्योंकि बाबा के दिल में सबके लिए प्यार। हमें सबके लिए प्यार, जब मैं जो हूं जैसी हूं बाबा ने स्वीकार किया और प्यार किया, तो हमारा कर्तव्य है कि बाबा के जो हैं जैसे हैं बच्चे हम दिल से स्वीकारें, रूहानी स्नेह से चले। आज बहुत अच्छा शब्द बाबा ने कहा कि प्यार हो, प्यार के साथ योग बल की ताकत हो। वो लौकिक प्यार नहीं, मैं आपको खिलाऊं, कपड़े दे दूं, चीजें दे दूं, वो तो लौकिक है और एक निमित बहन तो ये सब नहीं कर सकती, उनके सामने तो 500 भाई बहन। लेकिन एक दो के लिए प्यार मीन्स शुभ भावना, शुभ कामना, वो रूहानी नाता। प्यार के बजाय जहां वैर है, वैमनस्य है, घृणा है, वहां संगठन टूटता है। हमें सारे विश्व को जोड़ना है, हमें हर धर्म को एक बनाना है, रिजल्ट तो वही लानी है। वो प्रैक्टिकल, मैं जहां हूं वहां दिखाई दे, लोग कहें कि हाँ इनको सबके लिए निस्वार्थ प्यार। दूसरा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एक दो को सम्मान दे। सारी दुनिया ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सम्मान दे रही, लोग पहचान चुके हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या है। आज इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझ रही है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऑनेस्ट होते हैं, फेथफुल होते हैं, दिल से काम करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस है उन्होंने। आपको सबको पता होगा प्रैक्टिकल में ये भुज का अर्थक्वेक हुआ, तमिलनाडु सुनामी की जो मुसीबतें आई, गवर्नमेंट ने जो मदद भेजी, देश विदेश की गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा कुमारी के हाथ में सारी चीजें दो, वो सबको बांट के दे। पता है आप सबको कितने स्टीमर के स्टीमर, कंटेनर के कंटेनर भर भर के विदेश से सामान आए। मुझे याद है अफ्रीका से कितने 14 स्टीमर भर के सामान आया भुज के लिए, पर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को नहीं देना है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनों को ये देना। ये रियलिटी है। और हमारे भाई बहनों ने वो सारी चीजें बांट के दी लोगों को। अभी सुनामी में भी ऐसे हुआ, पंजाब से वहां के बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ने कितनी ट्रकों की ट्रकें सामान भर के भेजा, अनाज भर के भेजा। उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को ढूंढो, उसको ये सब देना। दुनिया पहचानने लगी, हम आपस में एक दो को रिस्पेक्ट दे, एक दो की अच्छाइयों को मान दे। हम अपनी महानता में रहे, अन्य के महान को स्वीकार करें। हम रोज मिलते हैं इसलिए हम सामान्य नहीं हैं। हम वही होवनहार देवी देवताएं हैं। हमें ये एक जन्म नहीं, 21 जन्म हमें साथ साथ चलना है। हमें एक दो की वैल्यू। तो हम रिस्पेक्ट देंगे, और रिस्पेक्ट तब आप देंगे जब आप उसके गुण को देखेंगे, विशेषता को देखें। अवगुण देखते हैं इसलिए घृणा करते हैं, भूले देखते हैं इसलिए नफरत करते हैं ना, लेकिन नहीं, हम उसकी विशेषता को दिखाएं, उस विशेषता से उस आत्मा को बढ़ाएं, तब यूनिटी बढ़ेगी। वो कहानी आपने सुनी होगी कि 7-8 बौद्ध साधु थे, उनका एक आश्रम बहुत अच्छा चल रहा था और कोई कारण से धीरे धीरे वो टूटने लगा, बंद होने पर आया। नजदीक में एक सन्यासी था, उसने देखा भाई ये आश्रम इतना अच्छा काम कर रहा था, आजकल अब सुमसाम होने लगा है, बिखरने लगा है। उन्होंने उनके सन्यासियों को बुलाकर एक बात कही कि आप जो 5-7 लोग हैं ना, मुझे आज स्वप्न आया कि आप में से ही कोई बुद्ध का अवतार है। तो हरेक जब ऐसे कहा तो हरेक एक दो की विशेषता से देखने लगे कि हाँ ये बुद्ध का अवतार हो सकता है, ये बुद्ध का अवतार हो सकता है। और इस रीति से हरेक की विशेषता चित पर आई और वो यूनिटी से चले और वो आश्रम सर्वाइव कर गया, बच गया। तो जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, अब देखो उसकी क्या विशेषता है। हमारा कनेक्शन विशेषता से, तब आप रिस्पेक्ट दे सकें। चाहे निमित्त आत्माएं हैं, उसकी क्या विशेषता है। पुराने भाई बहने हैं, उनकी क्या विशेषता है। नए भाई बहने हैं, उनकी क्या विशेषता है। तब हम रिस्पेक्ट देंगे, गुण देख सकेंगे और माला बन सकेंगे। और तीसरा है फेथ, विश्वास। ये ही देवता बनने वाले हैं। जैसे बाबा ने विश्वास रखा, कहां 60 वर्ष का अनुभवी बाबा और बाबा के साथ इस यज्ञ को करने चलाने वाली शुरू में जो निमित्त बनी हमारी दादियां, 12 14 16 18 साल की कुमारियां, कैसे बाबा ने विश्वास रखा। लेकिन एक भगवान वाच पर ब्रह्मा बाबा, प्रैक्टिकल काम तो ब्रह्मा ने किया ना, ब्रह्मा बाबा ने ये विश्वास रखा कि नहीं, इन्हीं माताओं कन्याओं से मुझे स्वर्ग स्थापन करना है। और आज वो हमारी दादियां हैं और विश्व में ये काम कर रहे हैं। हमें विश्वास हो कि ये ही देवता बनने वाले, उसके बजाय उल्टा सोचते हैं, ये क्या देवता बनेगा, मुझे नहीं लगता है ये देवता बने। हम कौन होते हैं कहने वाले, हमें किसने अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट दे दे। जो स्वयं बनता जाता होगा वो दूसरों के लिए भी जरूर समझेगा कि ये भी बन सकता है, मैं बन सकती हूं तो ये भी बन सकता है। खुद नहीं अपना परिवर्तन कर पाते हैं इसलिए दूसरों के लिए भी ऐसा सोच लेते नहीं। विश्वास, साधारण तन में ये वो ही कल्प पहले वाली देवात्माएं हैं। बाबा की इस ऊंची नजर ने ही तो हमें असुर से ब्राह्मण बनाया है, हम भी कैसे बने। कितनी ऊंची नजर से बाबा देखते हैं हमारा अंदर बाहर सब कुछ जानते हुए भी। कितनी बार दादियां हमें माफ करती हैं, हमारी बड़ी बहनें हमारी कितनी बातें समा लेती हैं और फिर भी हमें उस प्यार और रिस्पेक्ट से चलाती हैं। तो हमें भी हर एक के ऊपर ये विश्वास हो कि वो इस दर पर आ रहा है, भगवान ने चुना है, जरूर बनेगा। ये चीजें हमारी होंगी तो हमारा संगठन निर्विघ्न रहेगा, तब मैं भी ठीक से ज्ञान योग कर सकूंगी और मैं भी तो कुछ बन सकूंगी। अगर मेरा संगठन, मेरा सेंटर, मेरे साथी निर्विघ्न नहीं है, कितपित है, तो मैं खुद भी तो ज्ञान योग नहीं कर सकूंगी, तो नुकसान तो मुझे ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये सर्टिफिकेट लो, इस वर्ष ये सेंटर निर्विघ्न रहा, तो हम चेक करें एटलीस्ट मैं तो विघ्न का कारण नहीं बना, मेरे तरफ से कोई डिस्टर्बेंस ना। लौकिक दुनिया में भी लोग कहते हैं कि भाई कुछ मदद ना कर सको तो कोई बात नहीं, पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, है ना, किसी के बीच में नहीं आ। हम और कुछ ना कर सके, हम पॉजिटिवली ये हेल्प तो कर सकते भाई। जिसके पास धन है धन दे रहे हैं, तन है तन लगा रहे हैं, बुद्धि है वो बुद्धि लगा रहे हैं, समय है वो समय लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आप स्वयं अच्छी रीति से चले, दूसरों में हिम्मत भरे, उमंग भरे, उत्साह भरे, अनेकों को योगी सहयोगी बनाए, तो अपने आप भाग्य बनेगा। आपके पास तो धन है, साधन है, संबंध है, संपर्क है, हम समर्पित, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास कौन सा धन है, कौन सा साधन है, हम अपना भाग्य कैसे बना रहे? उमंग उत्साह बढ़ाओ, बाबा से जोड़ो, यज्ञ से जोड़ो, निमित्तात्माओं से जोड़ो, उसको और उत्साह दो, प्रेरणा दो, अपने लाइफ का अच्छा एग्जाम्पल सेट करो लोगों के आगे। ये तो हम हर एक कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई गरीब नहीं हो सकता है। धन साधन में कोई कहेगा मैं गरीब हूं मेरे पास कुछ नहीं, इसमें तो कोई नहीं कह सकता है ना, ये तो हर कोई कर सकते हैं। और तीसरा, हमारी सेवा निर्विघ्न हो। बहुत ज्यादा सेवा करे और विघ्न पैदा करे कोई आवश्यकता नहीं है। मिलके प्यार से, शांति से, रूहानियत से जो आप कर सकते हैं वो सेवा करिए। मैं और आप लड़ पड़े और मैं प्रोग्राम करके आऊं, क्या फायदा है? कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसी सेवा की। मम्मा कहती थी सेवा का कोई अच्छा प्लान आपने दिया, सब नहीं स्वीकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ड्रामा में देरी है, अभी धैर्य धरो थोड़ा, लेकिन सबकी एक मत से, सबकी दुआ और खुशी से करते। हमारी दादी जी कैसे करती, अथॉरिटी होते हुए भी दादी जी यहां हर प्रोग्राम में मीटिंग करती है, सबको इन्फॉर्मेशन देती है, सबकी राय सलाह, एडिशन करेक्शन, और सबकी खुशी उमंग उत्साह से करती है, तब इस यज्ञ में अविरत ये इतना भगीरथ काम चल रहा है। आप वही सिस्टम अपने सेंटर में अपनाइए। सेवा में अब दूसरे थोड़ी विघ्न डाल रहे, वो दिन चले गए, हमारे अपने ही नाम मान शान के विघ्न हैं। तो मर्जीवा बनिए, मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए सेवा नहीं कर रही हूं, मैं बाबा के लिए कर रही हूं। आज मैं धन से, तन से, साधन से कुछ मदद कर रही हूं, वो बाबा को कर रही है, उसका रिटर्न वो मुझे दे रहा है, मुझे औरों से क्या अपेक्षा रखनी। निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो सेवा निर्विघ्न हो सकती है। ये रिजल्ट हमें बाबा को देना है, दादियों को देना है, व्यक्तिगत हर एक जो जहां से आए हैं, आप स्वयं अपने लिए प्लान बना लें, अपने कुछ नियम बना लें कि मुझे ये रिजल्ट देना ही है और मुझे बन के दिखाना है। बस इतना ही तो काम हमें करना है, बाबा और कोई इच्छा थोड़ी हमसे रखते, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, हाँ, हाथ ऊपर करी। बहुत अच्छा, ओम शांति।
गीता दीदी के लिए दो लाइनें हैं। गीता दीदी, खुशबूदार फूल हो तुम इस ज्ञान सरोवर बगिया की। गीता दीदी, खुशबूदार फूल हो तुम इस ज्ञान सरोवर बगिया के। तुमसे ही महक रही है यह बगिया, इतने आंधी तूफान सहकर भी तुमने कितनी सुंदर बसाई यह ये रूहानी ज्ञान सरोवर की बगिया, यह ज्ञान सरोवर की बगिया। ओम शांति।